हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम 3 श्लोकों में वेदव्यास जी ने मंगल आचरण किया है, जिसमें प्रथम श्लोक में इष्ट को प्रणाम, द्वितीय श्लोक में वस्तु निर्देश और तृतीय श्लोक में आवाहन के आपियो आके इस शास्त्र को उसके विषय में बताया। तो आज से यानी श्लोक नंबर 4 से वास्तविक कथा जो नैमिषारण्य तीर्थ में स्टार्ट हुई थी, 88,000 ऋषि मिलकर जो यज्ञ कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था, वहां से आज की कथा प्रारंभ होगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण के लिए हम प्रथम 3 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, कृपया आप भी साथ दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरतश् चाटीष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकै तवोत्र परमो निर्मात्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवति महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रिध्यवरुध्यतीत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतत्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविकाः। कृपया ये जो आज का हम श्लोक पढ़ रहे हैं, 4th श्लोक नंबर 4, मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं, नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिषक्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे विषयः शौनकादय सत्रम् स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शब्दों का अर्थ देखिए। नैमिषे यानी नैमिषारण्य नामक एक जंगल यानी एक ऐसा स्थान जिसका नाम था नैमिष नैमिषारण्य। तो उसको नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे बताए ना अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष कहते हैं यानी भगवान विष्णु को। निमिष वैसे निमिष का क्या मतलब होता है? जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, ऐसे निमिष कहते हैं पलक को। और निमिष यानी कि जब पलक झपकाने का जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे एक सेकंड हो या दो सेकंड हो, उसमें क्या होता है हम लुप्त दृष्टि होते हैं। उस एक सेकंड के अंदर यदि कोई घटना होती है या कुछ भी होता है तो वो हमारी दृष्टि से लुप्त होती है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सदैव ज्ञानमय रहते हैं। ऐसा कोई एक क्षण, एक पलक गिरने का भी इतना समय नहीं होता है जितना कि भगवान की दृष्टि से दृष्टिगोचर हो सके, यानी कि उनको नजर ना आ सके। ऐसा नहीं है। अगर भगवान विश्राम भी करते हैं क्षीर सागर में, नेत्र मूंद कर यदि वो बैठे होते हैं, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय के लिए संसार से अवगत नहीं है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके अभिज्ञ स्वराट, वो हर समय हर क्षण भगवान जो है वो अपनी सृष्टि से अपनी हर रचना से अवगत होते हैं, अभिज्ञ होते हैं। तो अनिमिष क्षेत्र यानी भगवान विष्णु जो कि कभी भी निमिष कभी भी पलक नहीं झपकाते, या कभी भी ये देखिए लिखा हुआ ना, जो पलक नहीं मारते, विशेष रूप से उनका प्रिय स्थल था। अब ये कौन सा स्थल? जो नैमिषारण्य तीर्थ था वो भगवान विष्णु का क्षेत्र था। वो भगवान जो अपने भक्तों से या अपनी रचना से कभी भी अज्ञानता में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहते हैं, ऐसे भगवान का जो प्रिय स्थल था वो कौन सा स्थल था? नैमिषारण्य नामक एक जंगल। वहां पर अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता ना कि ये स्थान जो है वो भगवान को इतना प्रिय था, उसके क्या कारण है? तो वायु पुराण में एक कथा आती है कि जब कलयुग स्टार्ट हो गया तो हर जगह पे है ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस शुरू हो गई, क्योंकि जब भी कोई यज्ञ करता था तपस्या करते थे तो कलयुग का आगमन हो गया था। जब महाराज परीक्षित इस संसार से गोलोक में चले गए थे कथा सुनने के बाद, उसके बाद कलयुग इस संसार में आ गया। अब जब कलयुग आ गया तो भक्तों के लिए जीना उदोबर हो गया, यानी कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना उनकी तपस्या में अनेक प्रकार के विघ्न आना शुरू हो गए। फिर सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा वो कौन सा स्थान है जहाँ हम निर्विघ्नता से तपस्या करें। तो फिर ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र चलाया और बोला जहाँ पर इस चक्र का निमिषेण हो जाए, यानी कि जहाँ पर इसका भार खत्म हो जाए, तो समझना कि वह स्थान इतना पवित्र है जहां पर आप निर्विघ्नता से यज्ञ कर सकते हो। वास्तव में ये मनोमय चक्र था, यानी वो जैसे कलयुग की वजह से बहुत जगहों पे अशांति छा गई थी ना, लेकिन ये क्योंकि भगवान विष्णु का क्षेत्र था, भगवान विष्णु यहाँ पर आए थे क्योंकि जहां पर भगवान के भक्त मिलकर उनके लिए यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर भगवान आते हैं। और जो जगह पे भगवान आते हैं तो भगवान के आने से वो जगह इतनी पवित्र हो जाती है कि वहां पर आने के बाद आपके मन पवित्र होते हैं। यानी मनोमय चक्र था ना, तो वहां पर आकर उनका मन शांत हो गया। बाकी जगहों पे कलयुग का वाइब्रेशन इतना ज्यादा था कि उनका मन अशांत था, तो वो जगह पर आने के बाद उनका मन एकदम शीतल, एकदम शांत हो गया था। इसलिए इस जगह को नैमिषारण्य तीर्थ, यानी इसी जगह को उन्होंने चॉइस किया था। किस कार्य के लिए, अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। ऋषय, ऋषय का मतलब होता है ऋषिगण, यानी जो वेदों के श्लोकों को ठीक तरह से जानते हैं। ऋषि का मतलब होता है जो शास्त्र में, वेद में जितने भी श्लोक लिखे हैं उनको जो सही तरह से जानते हैं ना, उनको ऋषि कहते हैं। और कौन कितने ऋषि थे, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिखी है वेद व्यास जी ने, लेकिन लोकमुख से, आचार्यों से और अलग अलग पुराणों से हमें पता चलता है कि वहां पर 88,000 ऐसे ऋषि बैठे हुए थे जो वेदों के गंतव्य को जानते थे, वेदों के श्लोकों को ठीक तरह से समझते थे। और कौन थे वो, शौनक आदय, शौनक एक ऋषि थे और बाकी आदय माने शौनक भी और दूसरे भी बहुत सारे। अब यहाँ पर समस्त ऋषियों का परिचय नहीं दिया, केवल शौनक जी का परिचय दिया गया क्योंकि वो उन सब में प्रधान थे। जैसे ग्रुप होता है ना, बोला इसका ग्रुप, तो शौनक जो ऋषि थे उनके अलावा बहुत सारे ऋषि थे दूसरे भी, और उनमें प्रधान कौन थे, शौनक। अब शौनक और दूसरे ऋषि गण नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार इकट्ठे हुए थे। और क्यों इकट्ठे हुए थे, क्या करना चाह रहे थे वो, सत्रम। सत्रम का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ करना चाहते थे। अब यज्ञ क्यों करना चाहते थे वो ऋषिगण, वहां पर मिलकर बैठे थे, इतने सारे ऋषि आए थे, तो यज्ञ करने का उनका क्या अभिप्राय था। क्योंकि अगर हम कहें तो कलयुग आगमन हो गया था। अब कलयुग जब आगमन हो गया था तो उसमें भगवान की प्राप्ति करने का कौन सा तरीका है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम बारहवें स्कंद के 3rd अध्याय के श्लोक नंबर 52 में बताया जाएगा, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यज्ञतो मुखे द्वापुरे परिचर्यायां कलौत हरि कीर्तनम्। सत्युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापुर में मूर्ति पूजा करने से जो 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 फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल मात्र हरि कीर्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कीर्तन का मतलब दो प्रकार से लिया जाता है, एक हम भगवान के नाम को जैसे गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अलग अलग ध्वनि में गाते हैं और कीर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान की जो लीलाएं हैं उनका गान करना भी कीर्तन कहलाता है। तो कलयुग में एकमात्र भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नाम गुण लीलाओं का वर्णन करना, यही एकमात्र भक्ति है, उसी से सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऋषि थे वो, ऋषि का मतलब क्या, जो वेदों के श्लोकों को ठीक तरह से जानते हैं, तो वो भागवत के श्लोकों को भी जानते हैं। तो जब वो जानते थे कि इस कलयुग में मुक्ति का साधन या प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र साधन क्या है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करना, तो उन्होंने फिर यज्ञ करना क्यों शुरू किया, और यज्ञ भी कितना किस लिए किया था। अब देखिए आगे है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय लोकाय पढ़ने की बात कैसा लग रहा है कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए नहीं। देखिए शब्दों का जो अर्थ है उसमें देखिए, स्वर्ग में जिनकी महिमा गायन होती है, होता है ऐसे भगवान के लिए, यानी स्वर्ग में देवता यदि किसी की प्रशंसा करते हैं, जब भी परेशान होते हैं, जब भी देवताओं के ऊपर कोई संकट आता है तो वो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते, भगवान विष्णु के पास जाते, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते कि हमारे पास, हमारे ऊपर ये संकट आ गया है, आप हमें हमारे संकट का निवारण कीजिए। तो उस स्वर्ग के देवता भी जिस भगवान की उपासना करते हैं उस भगवान को प्रसन्न, स्वर्गाय लोकाय, यानी स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान को प्रसन्न करके लिए, लोकाय मतलब तथा भक्तों के लिए जो भगवान के संपर्क में रहते हैं, अब उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। और वो यज्ञ कितने समय के लिए कर रहे थे, आगे लिखा सहस्र। सहस्र का मतलब होता है 1000, समम का मतलब होता है वर्ष, 1000 वर्ष के लिए आसत संपन्न किया। अब वहां पर बैठ गए, कहां पर बैठे थे, नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल पर 88,000 ऋषिगण इकट्ठा होकर बैठे थे यज्ञ करने के लिए, ताकि हम स्वर्ग में जिन भगवान की कीर्ति गाई जाती है उन भगवान को प्रसन्न करें और उनके लोग, उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रसन्न करें और 1000 साल तक यज्ञ करें। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता है कि यदि वो 1000 साल तक यज्ञ करना चाहते थे तो कैसे कर सकते, क्योंकि वो ऋषि थे, जानते थे कि इस कलयुग में जीव की एक मतलब हमारी आयु जो है वो कितनी है, मैक्सिमम कितना है, 100 साल। अब 100 साल ईयर्स का एक प्राणी वो अगर प्लानिंग भी करे तो वो उसी हिसाब से प्लानिंग करे ना कि जितनी उसकी एज है। अभी वो ऋषि रहते हैं कलयुग में और यज्ञ प्रारंभ किया है और उसके बाद वो यज्ञ भी प्रारंभ किया है कितने ईयर्स के लिए, 1000 साल के लिए। तो यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो वो जिस स्थान पर गए थे उस वो स्थान जो था वहां पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का क्षेत्र था और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था उस क्षेत्र को। उस क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों सालों पहले बहुत सारे यज्ञ दान तपस्या इत्यादि हुई है, इसी वो क्षेत्र इतना महान था जहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। और यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न तो सॉल्व नहीं हुआ कि उन्होंने फिर यज्ञ करना क्यों शुरू किया, उन्होंने कथा या कीर्तन करना शुरू नहीं किया क्यों। तो इसका उत्तर क्या है कि उन्होंने पूरे लोक में प्रचार, अभी 88,000 ऋषि, जिस ऋषि एक एक ऋषि का एक आश्रम होता है और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कथा सुनने के लिए आते हैं या फिर ऋषियों का सम्मान या फिर कोई कार्य करने के लिए, तो 88,000 ऋषियों के अनुयायी कितने सारे लोग होंगे। तो उन सब लोगों में, उन सारी प्रजा में यह प्रचार करने के लिए, यानी कि सब में ये पंपलेट छाप दिए थे कि भाई हम 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में जा रहे हैं, यानी कि पूरे जितने भी विश्व के लोग थे उस टाइम पर सबको ये पता चल गया था कि वहां नैमिषारण्य में एक ऐसा यज्ञ होने वाला है जो कि 1000 साल चलेगा। इसका एक कारण ये भी है कि वो ऋषिगण कलयुग के संताप के कारण बहुत ज्यादा दुखित थे कि लोगों को इसका, दूसरे जो सामान्य लोग हैं उसका प्रभाव कलयुग का बहुत बुरा पड़ने वाला है, तो इससे शांति प्राप्त करने के लिए कोई उपाय ढूंढेंगे वहां पर बैठकर। और अगर यज्ञ का जैसे उन्होंने बोल दिया ना निमंत्रण, सबको पता चल गया यज्ञ है, तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है वरना तो बार बार कॉल करने आएंगे, भाई आज ये कार्य है, आज यहाँ पर ये कार्य करना है, ये स्थापना करनी है, वो करना है, यहाँ पर आके आपको सत्संग करनी है, या फिर मतलब वो बार बार ऋषियों को जैसे आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जब उन्होंने अपने सारे कार्य बंद करके, अपने सारे ऋषियों के जो भी आश्रम वगैरह थे उनके कार्य जो थे वहां से छुट्टी लेके वो आ गए थे नैमिषारण्य तीर्थ में, ताकि वहां पर आके कलयुग के जो आवागमन से इतना दूषित प्रभाव पड़ रहा है लोक में उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। अब वहां पर क्योंकि 88,000 ऋषि पहुंच गए थे तो ये खबर इतना फैल गई थी कि सारे ऋषि वहां पर, तो उन ऋषियों को ये खबर थी कि वहां पर जरूर कोई ना कोई महात्मा है। अब जब इतना बड़ा यज्ञ जब हो रहा है, सब लोक में इतना प्रचार हो गया, तो जितने भी बड़े बड़े महान ऋषि वान संत थे, तो जब उनको पता चला इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जैसे हमको कैसे पता चलता, बहुत सारे भक्त आए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो हम सब जाते ना, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वो भी जाते हैं कि हाँ भाई भक्त आए बहुत सारे, तो हम उनके, तो सब लोग जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा, उन सब की प्लानिंग क्या थी कि हम वहां पर जाएंगे, यज्ञ के नाम से ऐसे फेमस करेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन वहां पर जाकर हम इस कलयुग के दोषों का निवारण के लिए हम योजना बनाएंगे कि किस तरह से आसानी से कलयुग के दोषों से हम मुक्त हो सकें। वास्तव में भक्तों, कहा जाता है कि जहां पर गीता की समाप्ति होती है वहीं से श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रारंभ होता है। अगर गीता की समाप्ति पर, गीता के अंतिम शब्दों पर भगवान को हम जरा विचार करें, तो उसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी कि समस्त जो तुम्हारे धर्म हैं, तुम्हारे कर्तव्य हैं, उनका परित्याग कर दो और मेरी एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ये सारे ऋषि थे, इनका कर्तव्य था यज्ञ करना और वो यज्ञ करने के लिए ही एकत्रित हुए थे, लेकिन भागवत महापुराण का आरंभ ये बताता है कि सिद्धि उसी को प्राप्त होती है, भक्त वही होता है जो भगवान के शब्दों को ग्रहण करता है। उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने यही चर्चा हुई थी कि यहाँ पर 1000 साल तक यज्ञ होगा, लेकिन उन्होंने ये क्या किया, अब जैसे ही उन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया तो वहां पर सूत गोस्वामी जब अभी एंटर होंगे तो उन्होंने यज्ञ को विराम दे दिया। 1000 साल का यज्ञ करने के लिए प्रचार किया था, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उस यज्ञ को विराम दे दिया और बोला कि अब हमें यज्ञ नहीं करना है। हालांकि वो ऋषि थे, उनका कर्तव्य था यज्ञ करना, लेकिन अपने समस्त कर्तव्यों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रजा, बताया सब दुनिया को कि किस तरह से भगवान की शरण में जाया जाता है। अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस कलयुग में जीव के लिए क्या करने का। ऐसा नहीं था कि उन ऋषियों में पहले अक्कल नहीं थी, उनको समझ में पहले नहीं आ रहा था कि हम यज्ञ करें क्या करें, लेकिन वो यज्ञ करने का एक बहाना, बस यज्ञ करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन यज्ञ करना वाकई एक बहाना था। सिर्फ ये कि ऋषियों ने सोचा कोई ना कोई महापुरुष आएंगे और फिर हम कलयुग के रियल धर्म, क्या भगवान की कथा, भगवान के गुणों, भगवान के नाम लीला गुणों के विषय में सुनना, ये कलयुग का प्रथम धर्म है, वो आरंभ करेंगे। वो सारे ऋषि मुनियों ने ये हमें बताया इस भागवतम के जरिए कि इस कलयुग में यज्ञानां जप यज्ञोस्मी, भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान की लीलाओं का श्रवण ही इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। यही गीता का आदेश है और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में हमें शिक्षा मिलती है। अनुवाद देखिए, एक बार नेमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे, अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वास्तव में भागवतम महापुराण स्टार्ट हो रहा है, पहले तो मंगलाचरण था। प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम सुनाया जा रहा था। वैसे तो श्रीमद् भागवतम की 3 परंपरा मैंने आपको बताई थी ना, कि पहली परंपरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को सुनाया। दूसरी परंपरा, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शंकर्षण को, शंकर्षण ने संत कुमार को, संत कुमार ने सांख्ययान मुनि को जो देव और सांख्ययान मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को सुनाया और बृहस्पति जी ने पराशर मुनि को, पराशर मुनि ने पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय मुनि को सुनाया और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। लेकिन यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी जिस परंपरा की बात कर रहे हैं कि ये धरती पर कैसे आया, पहले भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यासी को, वेद व्यासी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने, अब वेद व्यास जी ने फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि प्रथम बार शिला सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। लेकिन जैसे ऐसे कथा होती है ना, सुखदेव गोस्वामी तो जैसे मतलब फर्स्ट टाइम कथा जो हुई थी भागवतम की वो क्या हुई थी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को इस धरती पर पहली बार जो भागवत कथा हुई थी वो क्या थी, सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज ने सुना था। और अब उस सभा में जहाँ पर परीक्षित महाराज सुन रहे थे उसमें और भी बहुत सारे ऋषि थे। अब देखो यहाँ पर ये समझने के लिए मिल रहा है ना, जैसे परीक्षित महाराज एक क्षत्र राजा थे और राजा के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया था, वो कितने महान राजा थे, सारी प्रजा उनके राज्य में इतनी सुखी थी और उनके ऊपर इतना महान संकट कि उनको 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप मिला था। तो जब वो गंगा के तट पर आके बैठ गए थे तो संसार के समस्त ऋषि मुनि जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे वो सब आ गए थे उनके लिए उपाय करने के लिए या उनको सहानुभूति देने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए कि इतने महान राजा उनको ये श्राप मिला है तो अंतिम दर्शन, या मतलब सारे जितने भी विचारवान पुरुष थे वो वहां पर एकत्रित हुए थे। और वहां पर सूत गोस्वामी भी आए थे। अब सूत गोस्वामी जो थे उनके द्वारा दूसरी बार नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम सुनाया जा रहा था 88,000 शौनक और 88,000 ऋषियों को। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वायुवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशेष ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके और विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर, इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर निश्चित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से वराह पुराण में नैमिषारण्य के जंगल का एक अन्य प्रसंग आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। यानी कि जब अब अलग अलग पुराणों में बताया जाता है कि इस स्थान की क्या क्या महिमा है, तो एक तो वही जो चक्र चलाया था ना ब्रह्मा जी ने, वहां पर आकर उस चक्र की धुरी समाप्त हो गई यानी निमित्त शेष हो गया और उस स्थान को महान कहा गया कि यहाँ पर आकर आप तपस्या करोगे तो कोई विघ्न नहीं होगा। और दूसरा वराह पुराण में क्या बताया गया है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अगर यज्ञ किया जाता है तो आसुरी लोगों की शक्ति घटती यानी कि जो आसुरी प्रभाव है वो समाप्त होते। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी ऋषि थे वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ को चुना था इस यज्ञ करने के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं किंतु पतित आत्माएं भौतिक सुखों में आसक्त रहती हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो यज्ञ कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसका उससे ही पता चलता है कि वो भक्त है। और अगर अपना कार्य वो करता नहीं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जो लगा रहता है वो भक्त नहीं, भले वो कितना ही बोल दे कि हाँ हम भगवान से प्यार करते हैं, हम भगवान, अक्सर लोग कहते हैं भगवान से प्यार कोई नहीं, कौन नहीं करता, सब भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं कहना काफी है क्या कि हाँ भाई हम भी भगवान से प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार है बट माला नहीं होती मुझसे, मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ मगर सेवा नहीं होती, भोजन अर्पण नहीं कर सकती मैं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे खाली तुम्हारे मुंह से कह रहे हो आप, लेकिन ये प्रेम नहीं होता। देखो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं, यानी कि उनको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है, खाली बोलना काफी नहीं होता है, भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगते हैं किंतु पतित आत्मा है, वो पतित आत्मा है, सिर्फ बोलने की हद तक कहते हैं कि हम प्यार करते हैं भगवान से, लेकिन प्रेम का एकमात्र, अगर आप उसको प्रदक्षिण करना चाहते हो तो उसका एक तरीका क्या है, सेवा। सिर्फ सेवा से वो बोलेंगे हाँ इतना प्यार करते हैं भगवान से, लेकिन नहीं, पतित आत्मा भौतिक सुखों में आसक्त रहती है। और श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है कि इस जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है वह कर्ता के लिए और अधिक बंधन स्वरूप होता है। ये कहाँ लिखा होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण 3.13 में बताया था, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जते ते त्वदं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। यानी कि अगर अपनी खुशी के लिए, यानी भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी भी कारण अगर कोई कार्य आप कर रहे हो तो वो इस संसार में अधिक भवबंधन से आपको बांध देगा। यानी कि अगर उसमें आप भगवान की खुशी के लिए कोई भी कार्य नहीं कर, इवन घर के भी कार्य, अपने जो नियत कर्म है वो भी आप भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यदि कृष्ण भावना भावित होकर कर रहे हो तो ही आपके लिए वह श्रेष्ठ होंगे, अन्यथा आपके भवबंधन का कारण बन जाएंगे। इसीलिए आदेश है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। और जब हम कोई कार्य भगवान या उनके भक्तों की खुशी के लिए करते हैं ना, तो वो कार्य भले सामान्य दिखता हो लेकिन वो यज्ञ रूप बन जाता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होती है। और शांति का केवल एक ही मार्ग है कि हम भवबंधन से छूटे। संपन्नता सिद्धि यही है कि हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, और ये एक ही तरीका। इसके अतिरिक्त अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे भवबंधन का कारण बनता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए थे। क्यों एकत्रित हुए थे? क्योंकि वो समस्त जो जनता है, जितने भी लोग हैं, उनका कल्याण करना चाहते थे। कलयुग आ गया था, उन्हें पता था कलयुग की धधकती हुई आग में सब झुलसने वाला है, इसलिए उनका कल्याण करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करे थे। और जगह का इसलिए चॉइस किया था क्योंकि यहाँ पर यज्ञ करने से आसुरी प्रवृत्ति जो है वो घट जाती है। और आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताएं, बुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता का सही मार्ग नहीं जान पाते। यानी कि दूसरे लोग, अब कोई बोलेगा हाँ ये तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से दूसरे तरीकों से शांति हासिल करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, धन कमाने के बाद बहुत सुंदर बंगलो बनाए, गाड़ी बनाए और उसके अंदर शांति हम करेंगे, ये यज्ञ करने से थोड़ी ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भुलक्कड़ है, उनको पता नहीं है, बेवकूफ है, शास्त्र के आदेशानुसार कार्य नहीं करते, अपनी मनमति के अनुसार करते हैं और उससे उनको कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। सारा दिन वो इस कोशिश में कि धन कमा लेंगे, उसमें अपने जीवन को है ना डिस्टर्ब करते हैं, दुखी करते हैं खुद को। और धन कमाने के बाद भी उनको भले कितना ही खूबसूरत बेडरूम हो, उसमें चिंता ही होती है, तो चिंता में ही लगे रहते हैं। जो भक्ति नहीं करते उनको कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भुलक्कड़ लोग हैं, यानी कि वो अज्ञानता में, वैसे आत्मा ज्ञानमय है, उनको पता है, आत्मा को खबर है कि हमारी, मेरी उन्नति, मेरी शांति का मार्ग केवल भगवान की भक्ति में है। लेकिन वो सब क्योंकि अज्ञानता के कारण, अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है और माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है, इसलिए भुलक्कड़ हैं और उनको पता ही नहीं है शांति तथा संपन्नता का सही मार्ग क्या है। किंतु साधु पुरुष इसे भली तरह जानते हैं, भलीभांति जानते हैं। साधु जो भक्त होते वो जानते हैं कि जीव का कल्याण एकमात्र भगवान की भक्ति से ही होता है। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसे कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति फैल सके। ऐसे लोग समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेल कर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब उनको इतनी जरूरत नहीं होती, वो तो सदैव भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हजार साल तक यज्ञ करने के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम आधा घंटा के लिए जो यज्ञ कर रहे होते हैं उसमें भी क्या हाल हो जाता है, बुरा हाल होता है, पसीने निकल रहे होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं, धुआं बर्दाश्त नहीं होता, अग्नि बर्दाश्त नहीं होती, और वहां पर 1000 साल के लिए उन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया था। कभी कितनी गर्मी होगी, कभी कितनी सर्दी होगी उस नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर कोई घर नहीं, इतना ओपन स्थान है, वहां पर कितने कष्टों को उनको झेलना पड़ेगा। उनको ये खबर थोड़ी थी कब आके हम कथा स्टार्ट करेंगे या कुछ और, लेकिन स्टार्ट तो उन्होंने से लिया था ना कि 1000 साल तक हमें यज्ञ करना है। और क्यों लिया था? जन सामान्य के कल्याण के लिए, वो व्यक्तिगत कष्ट करने। साधु पुरुष का यही स्वभाव है कि खुद अपने ऊपर कष्ट सहता है, लेकिन सोचता क्या है कि दूसरे का कल्याण हो। लेकिन लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि साधु लोग हमारे भौतिक कल्याण के बारे में सोचे, कोई उनको खाना दे दे, कोई उनको कपड़े दे दे, कोई उनको, ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए इतना उनको, उन्होंने परिश्रम नहीं किया है। उनको बहुत कुछ करना होता है। साधुओं को आपकी आध्यात्म की चिंता होती है कि आपके आध्यात्म, जहां पर वो जगह जहां पर पहुंचने के बाद कभी आपको रोटी कपड़ा और ये छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता ही ना प्राप्त हो, ऐसा आपका कल्याण करने के लिए वो सोचते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि भाई ये लोग तो देखो खाली भक्ति करते रहते हैं, महामंत्र का जप करते रहते हैं, और इनको है ना रिश्तेदारों की फिक्र होती है, ना इसकी फिक्र होती है, ना कुछ फिक्र होती है। लेकिन वास्तव में यही एकमात्र कल्याण का मार्ग होता है। आपको कोई खाना दे दे, कोई कपड़े दे दे, उससे क्या एक दिन का, एक टाइम का आपका कल्याण होगा। कोई है ना ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन दे दे तो इस जन्म तक आपका कल्याण होगा। लेकिन यदि कोई आपको भगवान की भक्ति देने का प्रयास कर रहा है तो उससे आपके जन्म जन्मांतर का कल्याण होना है। लेकिन यहाँ के लोग ये चीज समझने का प्रयास नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा अन्य सब देवता, मनुष्य, सिद्ध चरण चारण, विद्याधर तथा अन्य सारे जीव इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियों जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण होता रहता है, किंतु यदि शाखाओं तथा पत्तियों को विलग कर दिया जाए तो उनका पोषण संभव नहीं है। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाती है। इसी प्रकार जब इस मानव समाज को शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से छिन्न कर दिया जाता है तो उसकी सिंचाई यानी पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति का तथा साधनों का उपव्यय करता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जो है यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक विशाल वृक्ष है, और बाकी सारे देवता, मनुष्य, सिद्ध, जितने भी संसार में जो भी जीव हैं, जिनसे आपका रिश्ता है, वो सब उसकी शाखाएं, पत्तियां, टहनियां, वो सब है। यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता है तो वह समस्त जो वृक्ष है वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक एक पत्ते को निकाल कर आप पहले उसको कितना ही सींचो, कितना ही पोषण दो, कितना ही संतुलित मात्रा में जल, वायु इत्यादि प्रदान करो, लेकिन वो सूख कर एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो कभी भी पोषित नहीं हो सकेगा। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती हैं पग पग पर विफल होती रहती है, फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते हैं। यानी कि देख भी रहे हैं आज तक जितने भी लोगों ने भौतिक स्ट्रगल की है, बहुत सारा धन कमाया है, बहुत सारी दूसरी योजनाएं बनाई हैं सुखी होने के लिए, लेकिन वो एक दिन मृत्यु हो जाती है उनकी और सब कुछ यहीं पर छोड़ जाते हैं। देख भी हैं हम लोग, जीव देख रहा है, पग पर उन सबको विफलता मिल रही है, यानी कि संतुष्टि तो नहीं मिल रही है ना, शांति तो नहीं मिल रही है, सुख तो नहीं मिल रहा है, फिर भी वे जागने का नाम नहीं लेते, दूसरे वही कार्य कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये नहीं देखते कि जब इतनी सारी धन, जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया, जो विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति जिसके पास हो, वो भी अपनी संपत्ति छोड़ के चला गया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, इस संसार में जो भी आया वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं और कमाना है और कमाना है और कमाना है, ये सब कमाने से ना हम इस जीवन में सुखी हो सकते हैं और ना ही हमारा अगला जीवन सुखी हो सकता है। यदि कोई जीता है तो हनुमान जीता है ना, जो भगवान का सेवक होता है वही जीता है, जो भगवान की भक्ति करता है प्रहलाद जीता है, ध्रुव जीता है, जिनका समाप्ति जिनकी कभी नहीं होती, जिनका यश जिनका ऐश्वर्य अनंत काल तक रहता है, वो केवल भक्ति है, केवल भक्ति ही जो है वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का साधारण जीव जो है वो भक्ति के अलावा हर चीज से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस युग में जागरण की स्वीकृत विधि भगवान के पवित्र नामों का समूह कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथ्य साधनों को अत्यंत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता आने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, आगे चलकर उसकी विशद व्याख्या की जाएगी। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने साफ साफ बता दिया कि इस युग में जागरण यानी भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान के पवित्र नाम यश की लीलाओं गुणों का सामूहिक कीर्तन के मिला जाए और भगवान के गुणों के विषय में श्रवण किया जाए, कथा की जाए, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाए, एकमात्र यही बुद्धिमान लोगों का कार्य। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने साफ साफ कहा बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता आने के लिए उठा सकते हैं। ये काम केवल बुद्धिमान ही कर सकते हैं इस संसार में। अब यहाँ पर यह समझ में आना चाहिए कि जो बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। और आज जो भी अपने संसार में हम लोगों को बुद्धिमान लगते हैं कि ये बुद्धिमान है, वो सब तब तक बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ है, जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं या भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र यही एक तरीका है सिद्धि को, शांति को, संपन्नता को प्राप्त करने के लिए। और आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या होगी, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ है, तो आप तो केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और आनंद ही होता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा।